ओम शांति। अभी हम सुनेंगे दुआएं प्राप्त करने की विधि क्या है भ्राता निर्वैर जी।
ओम शांति। आज आप सब से मिलने का ये जो सुअवसर मिला आज के इस शुभ दिन पर, खास सभी भाई बहने बाबा से मिलने पधारे हैं, सोचता हूं कहां से शुरू करूं, क्योंकि विषय दिया है दुआओं का, दुआएं प्राप्त करना और दुआएं देना। ये एक कॉमन रिवाज है, जब बड़ों से मिलते हैं, खासकर हम देखते हैं अभी भी ज्ञानी तो आत्माएं भी जब दादियों से मिलती हैं तो सिंधी भाई बहने कहते हैं आशीष दो, हिंदी जानने वाले कहते हैं आशीर्वाद दो, उर्दू जानने वाले कहते हैं दुआएं दो। जब साकार बाबा को सामने देखता हूं तो बाबा कहते थे बच्चे जब बाप मिल गया, बेहद का बाप मिल गया, पहचानने के बाद ही मिला तो बाप का वर्षा भी प्राप्त हो गया। 21 जन्म के लिए डबल ताजधारी बनने का वर्षा प्राप्त कर लिया, उससे बढ़कर और दुआएं क्या मिलेंगी जिसमें सदा स्वस्थ, दीर्घायु, 125-150 साल आयु, और वो भी एवर हेल्दी, सदा स्वस्थ, और साथ साथ धन धान्य संपन्न, विश्व महाराजन, विश्व महाराणी, या यूं ही कहें कि सत्युगी दुनिया के मालिक, और सदा सुखी, सारे विश्व में शांति, घर घर में सदा ही दिवाली, क्योंकि आत्मा रूपी ज्योत जगी हुई, और सदा पावन। तो ये भगवान से प्राप्त आशीर्वाद कहो, दुआएं कहो, आशीष कहो, बाबा ने कहा ये आपका वर्षा है, हक है, और हक मांगने की भी जरूरत नहीं है। जिस सेकंड, जिस समय ये पहचान मिल गई, हम आत्माएं उस बेहद पिता की संतान हैं, पहचान मिलते ही बेहद के मालिक बन गए। इससे बढ़कर और कोई आशीष, और कोई दुआ, और कोई आशीर्वाद है नहीं। वर्तमान को देखें तो इस समय भी चारों तरफ का वातावरण देखो आप, सब तरफ अशांति, दुख, जैसे विकारों की आग लगी हुई है, और ऐसे दुख अशांति की दुनिया में कलयुग के अंत के समय में, ऐसे समय भी जिन आत्माओं को ज्ञान मिला है, परिचय मिला है, बल्कि ऐसा कहें कि जिन्होंने ये अच्छी तरह पहचान लिया है कि स्वयं भगवान हमें पिता के रूप में वारस बना के उस नई दुनिया के योग्य बनने की पढ़ाई स्वयं पढ़ा रहे हैं, लौकिक पढ़ाई थोड़ी सी भी पढ़ते हैं तो कहते हैं पढ़ाई के बिना मनुष्य जैसे जानवर है। और ये वो पढ़ाई राजयोग की शिक्षा, ईश्वरी ज्ञान और राजयोग की शिक्षा, जिससे न सिर्फ मनुष्य मानवता को सीखता है, देवता को भी सीखता है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, राजयोग से राजाओं का महाराजा बनने की पढ़ाई, और पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा। ये जिसको निश्चय हो जाए, उसका नशा क्या रहता है? किस नशे में रहते हैं सभी आप? रूहानी नशे में, नारायणी नशे में रहते हैं, नर से श्री नारायण बनने के नशे में, नारी से श्री लक्ष्मी बनने के नशे में। ऐसा वारस बनना, देवता बनना, इससे बढ़कर और कोई दुआ नहीं है और कोई आशीर्वाद नहीं है। फिर भी बाबा ने स्वयं इस वर्ष को दुआएं देने और दुआएं लेने का वर्ष कहा है कि ये वर्ष कैसे मनाया जाए, क्योंकि बाबा के सामने सिर्फ ब्राह्मण बच्चे नहीं हैं, सारा ही कल्प वृक्ष बाबा के सामने है, और कल्प वृक्ष का भी वो स्वरूप सामने है जो वृक्ष सूख गया है, पत्ते झड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे समय पर जब सभी आत्माएं किसी ना किसी दुख या रोग से ग्रस्त हैं, और चारों तरफ का जो वायुमंडल है उसमें हिंसा बहुत है, भय बहुत है, और कुछ भी सर्टन नहीं है, अगले मोमेंट क्या होना है कुछ पता नहीं, न्यू ईयर्स ईव, नव वर्ष की पूर्व संध्या किसके साथ मनाएंगे? तो थोड़ा पहले अपने सो मान में आए, उस नशे में आए कि हम आत्मों का सारे विश्व की 600 करोड़ आत्मों में से चुना हुआ पार्ट है, जिनको स्वयं भगवान ने चुन लिया है, विशेष है इसलिए चुना है। और विशेष क्या पार्ट बजाते हैं, ऐसा कौन सा हीरो का पार्ट बजाते हैं? तो बाबा ने बहुत सुंदर ढंग से समय प्रति समय हरेक का पार्ट क्या है वो बताया है, न सिर्फ बताया है बल्कि प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। जिन माताओं बहनों को सदियों से सब ने किस रूप में देखा और कहां उनको स्थान दिया, उनको बाबा ने सबसे आगे कर दिया कि भारत माता शक्ति अवतार का पार्ट सबसे श्रेष्ठ है। भारत माता शक्ति अवतार ही फिर से भारत को स्वर्ग बनाएगी, फिर से विश्व में शांति लाएगी। इसी तरह से बाबा ने कहा, वो कार्य जो जिसको सब असंभव मानते हैं, निमित्त युगलों को उसके लिए रख, फिर साथ में कुमारों का, कुमारियों का अपना अपना पार्ट, लेकिन सबका संगठित रूप अगर देखा जाए तो सब वो कार्य करते हैं कि जो सृष्टि इस समय नरक बन चुकी है उसको पुनः स्वर्ग बनाने का पार्ट, उसको पुनः पावन बनाने का पार्ट, जिसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता कि इस समय कोई परिवर्तन हो सकता है। और उसके लिए बाबा ने कहा, जब आप स्वयं परिवर्तित होंगे तो ये विश्व परिवर्तन हो सकता है। एक एक का महत्व बाबा ने बता दिया और दुआएं लेने का बेसिस वही है, फाउंडेशन वो है। हम सब जानते हैं किन बच्चों को दुआएं मां बाप की मिलती हैं, जो सुशील होते हैं, जो सच्चाई पर चलते हैं और जिनके अंदर सभ्यता होती है, जो सेवा हमेशा सेवाधारी बन के चलते हैं। और खासकर बाबा के वो बच्चे जो ज्ञान युक्त और योग युक्त जीवन में रहते हैं, बाबा के साथ सदा सच्चाई और सफाई से चलते हैं। ना सिर्फ बाबा के साथ, भगवान के साथ तो भगत भी जाकर के मंदिर में सच बोल देते हैं, कुछ भी करके आएंगे वहां तो सब सच बोल देते हैं, चर्च में जाकर के सब सच बोल देते हैं, लेकिन नहीं, एक दो के साथ भी, परिवार के साथ भी, समाज के साथ भी, सच्चाई और सफाई से जो चलते हैं वो सुपात्र बनते हैं सबकी दुआएं लेने के। स्वयं में अगर खजाना है, भरपूर है, तो दे सकते हैं। और खास तो ज्ञान मार्ग में देखा कि जितना देते हैं दाता के बच्चे, जितना दाता बनते हैं उसका पद्म गुना हो करके मिलता है, भविष्य में भी मिलता है, वर्तमान में भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्युग और त्रेता में ही मिलेगा, इस समय भी। सबसे पहले तो बाबा कहता है, जब आप कोई भी ऐसा पुण्य का काम करते हैं, दूसरों के कल्याण के निमित्त बनते हैं, तो पहले तो देने की खुशी, प्रत्यक्ष फल मिलता है, और फिर उसके साथ साथ जिनको देने के निमित्त बनते हैं, चाहे ज्ञान का खजाना देते हैं, चाहे किसी भी रूप से किसको मदद करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कोई ऐसा होगा जो दिल से थैंक्स नहीं देता होगा। لیکن جو سچی دل سے بنا سوارتھ کے داتا پن کا سنسکار آپ کا کام کرے اس کا ریٹرن بہت سکھد، ایک بار نہیں پر لاکھوں بار پراپت کرنے والے کے دل سے دعائیں ملتی. پریکٹیکل میں آپ کے سامنے ایسی کئی مثال ہوں گی جب نمت سیوا میں رہتے ہیں اور خاص کر جنہوں نے اس بات کو پہچان لیا کہ یہ جو کاریہ اس سمے بابا کا کاریہ چل رہا ہے، ایشوری کاریہ چل رہا ہے، ایشوری سیوا کا کاریہ چل رہا ہے، وشو پریورتن کا کاریہ چل رہا ہے، وشو کلیان کا کاریہ چل رہا ہے، اس سمے جتنا ہم من وانی کرم سے تن من دھن سے، اور بابا نے تو اس کے ساتھ جوڑا ہے آپ کی وشیشتائیں، آپ کے گن، آپ کی شکتیاں، آپ کے پاس جو ایشوری گیان کے خزانے ہیں ان کو بھی سیوا میں جب لگائیں تو اس کا تو بیج بویا ہوا اتنا پھل دیتا ہے جیسے لوکک میں، بابا کہتے تھے لوکک میں بہت دھن اکٹھا کرتے ہیں، خود کے لیے اتنا نہیں، بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے، تاکہ پوتے دوتے سب نرسنکلپ رہیں. اس سمے جو بھی پنیہ کا بیج بوتے ہیں کتنے کل تک چلے گا وہ؟ ہم تو سوچتے ہیں نہ کیول 21 جنم تک بلکہ 84 جنم ہی چلتا ہے. آج بھی سوئم کو دیکھو آپ، انتم جنم میں پہنچنے کے بعد بھی دنیا کی بھیٹ میں کہاں ہیں آپ؟ بہت سکھی، گیان کے پہلے بھی بہت سکھی تھے، ایسا نہیں کہ نہیں تھے. تو اگر اپنی کہانی کو دیکھیں 84 جنم کی، جہاں سے شروع کیا، ڈبل تاج دھاری تھے اور اتنے مہان تھے، اتنے شریش تھے، وہاں سے ایک ایک سٹیپ سیڑھی کا نیچے اترتے 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 جہاں پہنچے 84 جنم میں، وہاں پر بھی دنیا کی بھیٹ میں پھر بھی بہت اچھے تھے. کوئی ایک دم دیپک بجھتا نہیں ہے، بلکہ ایسا مانتے ہیں کہ وہ جو آدی اور انادی باپ سے جو ورثے کے روپ میں سنسکار ملے ہوئے ہیں وہ لاسٹ تک بھی کام کرتے ہیں. چوری ٹھگی اور یہ سب ایسا واتاورن ہوتے بھی اس سے بچے رہے، ڈھونڈتے رہے کہ کہاں کوئی ایسا مارگ ملے تو ہم ستیہ مارگ پر چلیں، شریشت مارگ پر چلیں، ایسا سنگ کوئی مل جائے، کوئی کتاب پڑھتے رہے، کوئی ستسنگ میں جاتے رہے، کوئی مندر، کوئی یاترائیں کرتے رہے، تو وہ سب سدھ کرتا ہے. الٹے راستے نہیں گئے، آتنکوادی نہیں بنے، لیکن شریشت مارگ جو اپنے آدی کے سنسکار ہیں، دیوے سنسکار ہیں، یا تو ایشوری سنسکار ہیں، جو روحانیت کے سنسکار ہیں، انہوں نے صدا ہی شریشت مارگ پر چلتے رہنے کے لیے بادھے کیا ہوا تھا. کر کے بابا کہتے ہیں تھوڑا بہت مایا کے وش ہوئے، کچھ عادت ایسی پڑ بھی گئی، لیکن ان سے کوئی سکھ نہیں پایا، وہ کوئی دل کو جستی نہیں تھی باتیں، عادت کے کوئی نہ کوئی سنسکار، کوئی الٹا کرم کرا بھی دیتے تو بھی سکھ نہیں تھا اس میں، مارگ ڈھونڈتے تھے کہ کیسے اس سے بچے، اور مارگ تو پھر بتانے والا باپ ہی آ کر کے بتاتے ہیں کہ جو پتت سے پاون بننے کے لیے جس کو پکارتے رہے اس کے سوا اور کوئی بتائے بھی کیسے، جو سوئم ہی چکر میں آتے ہیں، جو سوئم ہی گراوٹ میں آ جاتے وہ نہیں آپ کو نکال سکتے ہیں. اور دوسری بات بابا نے وشیش دھیان پر دلائی کہ پھر سے اپنے آدی اور انادی سنسکاروں میں واپس آنے کے لیے جو شکتی چاہیے، وہ شکتی جب تک سوئم باپ کے ساتھ من بدھی نہ لگے تب تک واپس نہیں آ سکتے. تو بابا نے جو راج یوگ سکھایا وہ کیول شانتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہت بہت بڑا کاریہ کرنے کے لیے کہ جو پرانا حساب ہے، جو عادت کے سنسکار ہیں، جو اچھے سنسکار نہیں ہیں، اس کو مٹانے کے لیے جو شکتی چاہیے وہ یوگ بل سے ہی ہو سکتا ہے. راج یوگ بل کے دوارا پھر سے پرانا سب ختم کرنا، یہ ہے سب سے بڑی باپ کی آشیرواد. سنسار میں یہ آرٹ کسی کے پاس نہیں، سبھی جانتے ہیں. کبیر کے دوہے بھی ایسے بہت گاتے ہیں، کتنا بھی باہر سے سنان کیا، گنگا سنان کیا، پاون نہیں ہوئے. یاترائیں کی، یاتراؤں پر جب تک رہے تو ڈسپلن میں رہے، بعد میں پھر ویسے کے ویسے. گرنتھ بہت پڑھے پر کہا پوتھی پڑھ پڑھ جگ موا، پنڈت بھیا نہ کو. بابا نے کیا سکھایا آ کے؟ وہی ڈھائی اکثر جس کی مہما کبیر نے کی، کہ باپ سے پیار پھر سے کرو تو سب سے اپنے آپ پھر روحانیت کا پیار ہو. تو یہ جو شریشٹھ راستہ، جو شریشٹھ مارگ، جو شریشٹھ شریمت جس کو کہیں، یہ شریمت ملنا ہی سب سے بڑی ایشوری آشیرواد ہے. اس کو پہچان لینا ضروری ہے، اور جس کو اس کا رس بیٹھ جائے. بابا کی مرلی تو سب پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں، تو جس مرلی کا اتنا بھکتی میں گائن ہوا، مرلی کے کارن اتنے مست ہو جاتے تھے، سب کچھ بھول جاتے تھے، وہی مرلی سچی سچی گیان کی مرلی. بھکتوں نے بہت اس کے گیت بنائے، بڑے رس سے گاتے، لیکن ستیتا نہیں جانتے. تو یہ ہے بابا کی سب سے بڑی آشیرواد. ہم ایک دو کو دعائیں دیں، دعائیں لیں، وہ نیچرل ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں. ہمارا ایٹیچیوڈ ایسا بن جانا چاہیے جیسے باپ کا ہے، تو باپ کے ہم سبھی سپوت بچے بن جائیں. جب باپ کے سمان سپوت بن جائیں ان کے، تو سوتہ ہی اپنی دل سے سب کے پرتی دعائیں نکلتی رہتی، سب کے لیے شبھ بھاونا رہتی ہے، سب کے لیے شبھ کامنا رہتی ہے. سبھی اپنے لگتے ہیں، کوئی پرایا نہیں لگتا ہے. भले अब हम परिचय में कहेंगे ये महाराष्ट्र से आए हैं, ये पंजाब से आए हैं, ये दिल्ली से आए हैं, ये लेकिन हैं सभी कौन? आपस में हम सब क्या हैं? मात पिता और भाई बहने, दूसरा तो कोई संबंध ही नहीं। इतना बड़ा ये ईश्वरी परिवार, जिन्होंने बाप को पहचाना है, जिन्होंने नहीं पहचाना है वो भी हैं किसके बच्चे? वो भी तो बाबा के ही बच्चे। तो जब ऐसा एक बड़ा यथार्थ रीति से अपने मन में ज्ञान को रखते हैं और उसको अप्लाई करते प्रैक्टिकल में, रोज की जीवन में, व्यवहार में, तो स्वाभाविक सबके प्रति शुभ भावना रहती है और दिल में हर एक को मदद करने की, हेल्प करने की आंतरिक इच्छा रहती है, जिगरी इच्छा रहती है, किसी के कहने की जरूरत नहीं रहती। और वो एक सहज सरल साधन बनता है सबकी दुआएं लेने का, छोटे से छोटे कार्य में भी, बड़े से बड़े कार्य में। बाबा हर तरह की अपॉर्चुनिटीज देता है, आप प्रैक्टिकल देख लो, ड्रामा के अंदर हर दिन ऐसे मौके आते हैं, लेकिन जिनका बुद्धि योग, जिसको बाबा कहते हैं, जिनकी लाइन क्लियर है, बाबा के साथ जिनका बहुत प्यार है, जो बाबा की श्रीमत को अच्छी तरह से समझ करके प्रैक्टिकल में लाते हैं और जो इस बात को समझ रहे हैं, इसकी अर्जेंसी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना अर्जेंट है इस समय विश्व कल्याण के कार्य में बाबा के राइट हैंड बनना, बाबा के सहयोगी बनना। ये एक ही मौका सारे कल्प में मिलता है जब सचमुच भगवान के राइट हैंड बन करके और उसके कार्य में हम सहयोगी बन सकते हैं। ये बार बार नहीं आता है। मुझे याद आता है एक बहुत सुंदर सीन, एक 1964 का, जब पहली प्रदर्शनी बनी थी जिसका नाम था विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी, बॉम्बे की बात है। तो उस समय एक भाई बैंक में चपरासी का काम करते थे, दादी निर्मल शांता के पास। उस समय वो आए और दादी को आकर के जो उसकी फर्स्ट को, पहली तारीख को जो उसको पे मिली, सारी की सारी ला करके दादी के हाथ में दे दी। तो निर्मल शांता दादी ने पूछा, उस समय वो 150 रुपया तनख्वाह थी, उन दिनों में 150 बहुत होता था, तो दादी ने पूछा, भाई तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? कि मैं हूं, मेरी युगल है, दो बच्चे हैं और नहीं है कोई। कहा, उनके लिए कुछ आपने रखा? कि नहीं दादी, उसकी अभी जरूरत नहीं, ये प्रदर्शनी बन रही है और इसमें मैं सहयोग देना चाहता हूं, ये क्लब के बाद मौका मिला है, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। और उनके लिए मैंने जो अभी तक थोड़ा थोड़ा जमा करके बैंक में रखा, मैं उससे वो कार्य चला लूंगा, लेकिन इस महीने तो मुझे ये करना है। इस तरह की स्पिरिट, इस तरह की भावना जो है बाबा के कार्य में, आप सोचिए कि उस आत्मा को, जैसे बाबा कहते ना, अमीर का लाख اور غریب کا 10 روپیہ 1 روپیہ دونوں سمان، کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس کو، اور کتنی اس کو آشیرواد ملی دادی سے۔ جب بابا کو سماچار ملا تو بابا نے بھی بہت پیار سے اس کو چٹھی لکھی کہ ایسی سیکریفائس کرنے والے، ایسی قربانی کرنے والے بھی بابا کے بچے ہیں۔ اور اس سمے اس پردرشنی کا ہمارا ایسٹیمیٹ کتنا تھا؟ آج کے حساب سے تو بہت چھوٹا سا اماؤنٹ ہے، 750 روپیہ تھا، کر کے 1000 روپیہ لگا ہوگا، کیونکہ شروع میں وہ پردرشنی کا سوروپ جو تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا جیسے آج کل میلہ ہوتا ہے، پردرشنی ہوتی ہے، میوزیم بنتے ہیں، وہ سوروپ نہیں تھا، پہلی پہلی پردرشنی تھی۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بابا کے اور جتنے بھی کارے ہیں، دن بدن کچھ نہ کچھ نیا بنتا ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہے، اور جو بن رہا ہے وہ سب سیوا میں لگ رہا ہے۔ ایسا ایک بھی ستھان آپ کو نہیں ملے گا کہ جو بنا ہو اور وہ سیوا میں نہ لگا ہو، بلکہ وہ بھی چھوٹے پڑ جاتے۔ یہ حال آپ کا بھی دیکھنا آج شام کو کیسا لگتا ہے، اس سمے آدھا بھرا ہوا ہے اور شام کو پورا بھرا ہوا ہوگا، اور بلکہ آپ سب بھی سوچیں گے کہ ہم پہلے پہلے آ کے بیٹھ جائیں، نہیں تو پیچھے جا کے بیٹھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے جب ہم بے حد میں سوچتے ہیں کہ سارے وشو کو پریورتن کرنا ہے، بیچ میں ایک سلوگن تھا انگلش میں، when we change the world changes، اس پر وچار کیا کہ دنیا اپنے آپ چینج نہیں ہوتی ہے، ہم بدل جائیں اس سے دنیا بدلنے والی نہیں، ہماری دنیا بدل جاتی ہے، لیکن اس میں ایڈیشن کرنی پڑتی ہے، when we change، جب ہم بدلتے ہیں تو ہمیں اس بدلاؤ کا سکھ ملتا ہے، بدلنے سے بہت آنند ملتا ہے، بہت خوشی ملتی ہے، اور بہت اپنے دل میں اپنے پرتی عزت پیدا ہوتی ہے، سومان کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو مانوتا کے ناطے اپنا پن فیل کرتے ہیں کہ جیسے مجھے سکھ ملا ہے، یہ سنسار کے اندر جتنے بھائی بہنیں ہیں وہ تو میرے ہی بھائی بہنیں ہیں، ان کو کیسے یہ سکھ ملے؟ تو ہم نمت بنتے ہیں، when we change the world، نمت بنتے ہیں پریورتن کرنے کے لیے، اپنے آپ پریورتن نہیں ہوتا ہے۔ برہما بابا کو ساکشاتکار ہوا شروع میں 1936 میں 1937، ان کو ساکشاتکار ہوا اور ان کے جیون میں پریورتن آیا، لیکن اپنے آپ وشو نہیں بدل گیا۔ بابا کا اس سمے جس طرح کا اپنا سٹیٹس تھا، بزنس مین ہونے کے ناطے سے جو ان کے پاس تھا، وہ انہوں نے اپنا تن، من اور دھن، اور اس کے ساتھ میں سمے، سنکلپ، من، وانی، کرم، سب سیوا میں لگا دیا، جس سے اتنا بڑا یہ یگ آج جو سوروپ دیکھ رہے ہیں، اس کا بیج تو چھوٹا ہی تھا نا، اور اس میں بھی نمت ایک بابا، 1963 کی بات ہے، بامبے میں آئے ہوئے تھے بابا، اور رات کو بھوجن کے بعد ہال میں تھوڑا ٹہل رہے تھے۔ بامبے کے تو ہال آپ سمجھ سکتے، چھوٹا سا ہال جس میں کلاس روم تھا، فلیٹ کا کتنا بڑا ہال ہوگا جس میں 40-50 لوگ بیٹھ سکیں، ڈائمنڈ ہال کی طرح تو نہیں ہوگا وہ، तो टहलते टहलते अचानक खड़े होकर के दृष्टि देने लग गए। तो मुझे बड़ा बाबा की दृष्टि का, हर एक को जैसे इच्छा होती है दृष्टि प्राप्त करने की, तो मैं भी बड़े प्यार से बाबा की तरफ देखता रहा। और अचानक बाबा ने पूछा, बच्चे, बाबा का प्यार से बोलने का तरीका था, बच्चू तुम जानते हो स्थापना में कितना खर्चा होता है? तो मैं तो सोच में पड़ गया कि मैं क्या जवाब दूं, और ना मेरे ख्याल में वो बात आई जो बाबा के मन में थी। और फिर दूसरे दिन बाबा ने उस समय थोड़ा सा कुछ कान में सुनाया, और दूसरे दिन बाबा ने बड़ी बेहद की बात सुनाई कि बच्चे देखो विनाश के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, अरबों खरबों डॉलर जो है, हाँ, पद्मों विनाश के लिए सारा खर्च कर रहे हैं, और स्थापना के लिए कितना खर्चा होता है? बाबा ने उस समय तो कहा 3-4 लाख ही खर्च होता है, क्योंकि बाबा ने जो बीज बोया उस समय शुरू में अपनी कमाई का, जिसका ये इतना वट वृक्ष फैल रहा है, बढ़ रहा है आगे, जिसमें हर एक भाई बहन का भाग्य बन रहा है। बाबा ने अपना भाग्य बनाया। बाबा बहुत प्यार से कहते थे, देखो बच्चे, बाबा ने सब शिव बाबा पर कुर्बान किया, अर्पित किया, तो शिव बाबा जिम्मेदार हो गया बाबा की संभाल करने का। क्या बाबा उसके बाद कोई भूखा मरा? यज्ञ के अंदर जो बच्चे थे, क्या बच्चे कोई भूखे मरे जो भी समर्पित हुए? क्योंकि शुरू में 350-400 के करीब भाई बहने, जो शुरू में 14 साल तपस्या की, जिन्होंने, जो आज हम सब की पालना करने के निमित्त हैं, हमारी दादियां हैं, तो ऐसे बाबा की विजन उस समय की इतनी विशाल कि देखो स्थापना में निमित जो बनते हैं वो कोई बहुत बड़े शाहूकार नहीं है, वो कोई पद्मापति नहीं है, करोड़पति बहुत कम कोई करोड़पति होंगे, उस समय तो करोड़पति भी कोई नहीं थे, लखपति थे। लेकिन बाबा ने इतना सुंदर ये एक सिस्टम बना दिया कि ये नहीं कि करोड़पति और लखपति तो सबकी दुआएं लेने के निमित्त बन जाए, बड़ा हॉस्पिटल बना दें, कॉलेज बना दें, यूनिवर्सिटी बना दें, और गरीब नहीं। बाबा ने तो अपना सिस्टम ही नया निकाला। बहुत प्यार से कहते थे, अमीरों को गरीब बनाऊंगा, गरीबों को अमीर बनाऊंगा। एक 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 की, एक एक रुपए की ईंट से उसका महल बनेगा सतयुग का। और जो अमीर हैं आज, जो बहुत करोड़पति अरबपति पद्मपति हैं, उनका सब मिट्टी में मिल जाएगा। प्रैक्टिकल देखने में आ रहा है। 11 सितंबर को क्या हुआ? तो इस तरह से बाबा का सिस्टम ही दुनिया से न्यारा है। इसलिए बाबा ने कहा कि चाहे कोई कम कमाने वाला है, कोई ज्यादा कमाने वाला है, कोई नहीं कमाने वाला है, तो भी बाबा मम्मा का मिसाल देते थे कि मम्मा जब यज्ञ में आई तो साथ कुछ भी नहीं लेके आई, लेकिन मम्मा ने अपनी जीवन जो यज्ञ में समर्पित की और निमित बनी, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ सबके सामने ऐसी उन्होंने दिव्य गुण संपन्न बनाई, ऐसी योगी जीवन, ऐसी त्यागी जीवन, जो मम्मा की दृष्टि पड़ने से मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो जाए। तो बाबा ने कहा देखो मम्मा साथ में कुछ नहीं लाई, लेकिन जो मम्मा ने अपनी धारणा बनाई और साथ में अनेकों की जीवन को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बनी और ज्ञान धन का जो दान किया, बाबा से भी आगे चली गई। बाबा प्यार से कहते थे, मम्मा हमेशा बाबा को आगे रखती थी कि नहीं, रचता तो वही है, लेकिन मिसाल सामने है प्रैक्टिकल। तो ये समय ऐसा है कि जो इस समय को पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाबा ने तो बहुत प्यार से कहा है, आप इतने महान वीवीआईपी हो, हाँ, देखने में साधारण है। अपना भी मिसाल देते थे कि बाबा तो साधारण है, जैसे कुर्ते धोती में बिजनेस में था वैसे ही यहां है। चित्रों में भी आप देखेंगे कोई भी सजावट नहीं है, कोई तिलक नहीं लगाया हुआ मस्तक पे, कोई गले में नहीं कुछ डाला हुआ है, कोई हाथ में कुछ नहीं डाला हुआ है, कोई हाथ उंगलियों में कोई कुछ नहीं पहना हुआ है, बिल्कुल सिंपल साधारण। लेकिन बाबा जैसा नशा किसी बादशाह में भी नहीं देखा, क्योंकि अंदर में भरपूर था बाबा। बाबा को ये नशा था कि मुझे कौन मिला है, और दूसरा नशा था कि मैंने अपना तन बाबा को दिया है और उसके लिए सदा कहते बच्चे फॉलो फादर। बाबा की पहली मुरली जो हमने सुनी 1959 में, उसमें यही महावाक्य थे कि जैसे बाबा ने स्वयं को समर्पित किया है, बच्चे आप बच्चे भी निमित बनो, आप बच्चे भी बाप को फॉलो करो। वो तीर लगा हमें भी और बहुत सुख पाया। जब से बाबा के बने, एक बार बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा को हर महीने का जो उस समय थोड़ा बहुत हिसाब था वो दिखाते थे, तो बाबा एक बार कहने लगे, बच्चे आप थोड़ा बैंक में क्यों नहीं रखते हो। मैंने कहा बाबा क्या करूंगा, 22-23 साल की उम्र में तो अभी नशा होता है ना, कि अभी तो हम कमा सकते हैं, ऐसी क्या बात है। तो बाबा ने कहा कभी ऐसा टाइम आ जाए, उसको सिंधी में बोलते हैं आई वेल, जरूरत पड़ जाए तो। अब यह है निश्चय की बात, जिसको ये निश्चय है कि स्वयं भगवान इस समय हमें गाइड कर रहा है, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है, वो स्वयं मात पिता का पाठ बजा रहा है, तो मैंने कहा बाबा आप बैठे हैं फिर मुझे क्या चिंता है। फिर बाबा ने कुछ नहीं कहा, और मुझे इस बात का बड़ा नशा है, बड़ी खुशी है कि आज दिन तक मैंने कभी कोई बैंक अकाउंट अपने नाम का नहीं खोला है। बाबा की सर्विस है, यज्ञ की सर्विस है, हॉस्पिटल की सर्विस है, उसके लिए साइन करता हूं, पर वो बैंक अकाउंट कैसे खोलना मुझे अभी तक नहीं आता। लेकिन प्रश्न उठता है क्या इस 42 साल में बाबा ने संभाल नहीं की। बहुत संभाल की, मैं तो इतना नशे में रहता हूं कि 84 जन्म ही बाबा ने मेरे को प्रिंस बना के रखा। तो वही बात मैं सोच रहा था कि हमारे इतने भाई बहने हैं, उसका भी नशा रहता है। जैसे लौकिक में किसी के दो चार भाई बहने हों, कमाने वाले हों, तो बड़े खुशी से कहते एक भाई मेरा जज है, एक भाई डॉक्टर है, एक बहन हमारी प्रिंसिपल है। तो हम तो सोचते हैं कि हमारे तो लाखों भाई बहने सभी कमाने वाले हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो आज भाई बहने हमारे, वो बाबा के श्रीमत के अनुसार सतयुग के आद में आकर के डबल ताजधारी बने, ये हमारी शुभ भावना है। और उसके लिए समय को पहचान करके, जैसा समय है, संगम का कितना साल बाकी होगा, अभी कितना समय चलना है और संगम को, बाबा से पूछेंगे आज। तो समय को सामने, बाबा फिर कहता नहीं, समय तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम पूरा ही दिल से बाबा पे समर्पित हो जाएं, चाहे कहां पर भी हैं, लौकिक अलौकिक दोनों संभालते हुए, सब ध्यान रखते हुए, पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए, लेकिन दिल से बाबा के समर्पित बच्चे होकर के रहें। जितना दिल से समर्पित, ऑटोमेटिकली इस ड्रामा के अंदर पुण्य कर्म कमाने का मौका बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। जितना चाहे उतना पुण्य कर्म कमा सकते हैं, और पुण्य से ही दुआएं मिलती हैं। शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से किन बच्चों को दुआएं मिलती हैं? बाबा कहता है जो बाबा की श्रीमत पर सच्ची दिल से चलते हैं, जो योगी आत्माएं हैं, जो ज्ञानी आत्माएं हैं, और साथ साथ इतने निर्माण रहते हैं, जो बाप के समान विश्व सेवाधारी होकर के रहते हैं, उनको तो बाप की दुआएं मिलती हैं। और जितना सोमान में रहते हैं, इस नशे में रहते हैं कि हमारे जैसा संसार में सौभाग्यशाली कोई नहीं है, हमारे सदा खजाने भरपूर हैं, और ऐसे खजाने जिनकी चिंता नहीं करनी पड़ती है संभालने के लिए। आज मुरली एक पड़ी मैंने, उसमें था कि दूसरे जो भी धन है, खजाने हैं, उसकी तो बहुत चिंता रहती है, और ये ऐसे खजाने हैं कि दान भी देते जाओ और बढ़ाते भी रहो, मल्टीप्लाई भी करते रहो, और चिंता भी कोई नहीं, बल्कि सुख ही सुख मिलता है। तो इस समय निमित्त बन करके जो मौका मिले, बाबा ने कहा सवेरे सवेरे सबसे अच्छा मौका है मनसा सेवा का, सारे विश्व को शांति का दान देने का बहुत अच्छा मौका। और मैंने जो अनुभव किया है, इस रुचि से जब हम बाबा की याद में सुबह को बैठते हैं, बाबा के पास जैसे जाके बैठ जाते ऊपर, उससे अपने संस्कार फास्ट चेंज होते, एकदम पावन बन जाते, और साथ ही साथ अनुभव होता है सचमुच बाबा अपने साथ बिठा के हमें इतना शक्तिशाली बना करके वाइब्रेशन कैसे सारे विश्व में फैलाता है। यह अभ्यास सबसे श्रेष्ठ, और बाबा खुद प्रैक्टिकल में इस बात पर, ब्रह्मा बाबा बहुत अटेंशन देते थे। आज भी हम देखते हैं हमारी दादियां एक तो उनकी सेवा ही ऐसी है, भाई बहनों से मिलना है, दृष्टि देनी है, तो बाबा की याद में रहना ही है, तो ऑटोमेटिक उनकी कमाई हो रही है। लेकिन साथ साथ अटेंशन भी रखते हैं, विशेष ध्यान देते हैं। नए वर्ष के लिए कोई संकल्प भी करना होगा। 2-3 दिन पहले ज्ञान सरोवर में छोटे छोटे बच्चों के क्लास में थे हम, विदेश के बच्चे 35 के करीब, 5 साल से 12 साल की उम्र के, सबने ताज पहने हुए। हम गए जब तो सबने ताज पहने हुए और फूल हाथ में लिए हुए इतना सुंदर लग रहे थे। और उस क्लास में उन्होंने गुलजार दादी जी के सामने अपना संकल्प पढ़ के सुनाया, और संकल्प एक शब्द का था, बहुत छोटा सा सेंटेंस, कि हम सभी बच्चे आज ये प्लेज करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम सदा मुस्कुराते रहेंगे। कितनी अच्छी बात, इस दुनिया में मुस्कुराते हुए लोग मिलते हैं, अगर तो सिर्फ बीकेज में ही मिलते हैं, और कहीं नहीं मिलते हैं। क्योंकि सदा बाबा के जो बन गए, तो वो एक गीत पुराना बाबा के दिनों में, साकार के दिनों में बजाया करते थे कभी मुरली से पहले, सुना होगा आप लोगों ने, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कराना सिखा दिया। तो हम देखते हैं क्या, जितना बाबा के साथ मन लगा रहता, अंदर ही अंदर वो रस मिलता रहता, खुशी मिलती रहती, तो मुस्कान तो ऑटोमेटिक है। और बच्चों ने इस तरह का प्लेज लिया, ऐसे ही युवा भाई बहनों ने अपना संकल्प लिया। इस समय दादी जानकी ने उनके लिए, जो खास माताएं वहां पर हैं विदेश की, उनको खास शक्तियां बना दिया है कि शक्ति सेना का विशेष पार्ट है, इसलिए बठी करो, और वो अपना संकल्प है उनका। तो इसी तरह से आज के इस क्लास में जो भी बहनें, जो भी भाई बैठे हैं, जरूर दिल ही दिल में कोई ऐसा संकल्प करना कि हम क्या करेंगे, अपना पुण्य का खाता, क्योंकि दुआएं देना और दुआएं लेना तभी हो सकता है जब अपना पुण्य का खाता अधिक से अधिक जमा करेंगे। तो मन से, जितनी मनसा सेवा करेंगे उतना मन निर्मल होगा, वाणी से जितना मीठा बोल करके सेवा करेंगे उतना सबके दिलों को सुख देंगे, और कर्म में प्रैक्टिकल ऐसा श्रेष्ठ कर्म करें जिसको देख करके सब कहें वाह वाह, वंस मोर करें, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने का। और साथ साथ बाबा का जो बेहद का कार्य चल रहा है इस समय सारे विश्व को परिवर्तन करने का, सभी सुनते तो रहते हैं क्या क्या चल रहा है, उसमें भी पूरा दिल व जान से, शुभ संकल्प से और तन मन धन से जब पूरा सहयोगी बनेंगे तो अवश्य ही महाराजा बनेंगे, महारानी बनेंगे। मैं नहीं कहता, जो बाबा कभी कभी साकार मुरली में कहता, अच्छा नहीं तो चलो धनवान तो बनो, धनवान वो बाबा उनको कहता है जो पूरा धारणा पे नहीं चल पाते हैं, चलो धन से ही सेवा करते हैं, सेंटर खोल देते हैं, दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनते, अपना इतना नहीं करते जितना दूसरों का हो जाता है। लेकिन नहीं, तो स्वयं का कल्याण करें और विश्व कल्याण के निमित्त बने, उसके लिए अपना पुण्य का खाता जमा करें, इसको कहेंगे दुआएं लेना और दुआएं देना। ओम शांति। अभी 10 मिनट के लिए सभी भाई बहने मिलकर के सारे विश्व के कल्याण के लिए खास अपना योग का दान देंगे, क्योंकि सभी आत्माएं शांति के लिए तड़प रही हैं और वो शांति का दान सिवाय बाबा के बच्चों के और कोई करना जानता ही नहीं है। तो सभी बाबा के साथ मन में यही सोचे, हम बाबा के समान मास्टर शांति के सागर विश्व शांति स्थापन करने के निमित्त शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शांति धाम के निवासी हैं और शांति के वाइब्रेशन प्रकंपन फैलाने के निमित्त हैं, अपने शक्तिशाली शांत स्वधर्म में स्थित होकर शांति के सागर पिता के साथ साथ शांति दाता का पार्ट अब बजा रहे हैं। ओम शांति।